الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے نام شناخت کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، فاحسنوا الصلاۃ علی، تو مجھ پر اچھے طریقے سے درود پاک پڑھو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. نگران شورا ہمارے ساتھ ہیں اور آج ہم برداشت کے موضوع پر جو ہے وہ بات کریں گے. آپ کی کالز کو بھی انشاءاللہ سلسلے کا حصہ بنائیں گے، آپ کے سوالات بھی شامل کریں گے. پہلا سوال یہ، آپ برداشت پر سبق دے کے آج یہ اپنا جو بھی آپ بیان فرمائیں گے، یہ سب کچھ بتا کے آپ ناظرین کو کیا، ان سے کیا چاہتے ہیں، لوگ کیا کریں بھائی برداشت کا سبق سن سن کے؟ کیا آپ لوگوں کو ایک اس طرف نہیں لے کے جا رہے کہ بھائی جو بھی آپ کے ساتھ کر رہا ہے ٹھیک ہے، آپ برداشت کر لیں، ہونے دیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. میں بار بار یہ کہہ کر کیا کرنا چاہ رہا ہوں،
جی
یہی چاہ رہا ہوں کہ لوگ برداشت کریں. بس
برداشت تو کر ہی رہے ہوتے ہیں. کون لوگ جو ہے نا، وہ جب برداشت ختم ہو جاتی ہے کام تو پھر شروع ہوتا ہے.
برداشت ہے نہیں، ختم تب ہوتی ہے جب کچھ ہوگا تو ختم ہوگا نا. ہمارے یہاں عدم برداشت کا ایک زبردست قحط ہے، بلکہ ایک عرصے سے عدم برداشت کا وائرس ہے جو ہمارے اخلاق کو اور ہمارے کردار کو تباہ کرتا چلا جا رہا ہے.
جی.
اور اس سے اتنی اخلاقی اموات ہو چکی ہیں کہ وہ شاید گوگل میں تو نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ رپورٹ نہیں ہوتی. کیونکہ ایک تو انسان کی اپنی موت ہے، ایک انسان کی اخلاق کی موت ہوتی ہے جو اس کے کردار کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. اور برداشت نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا، نہیں آپ سے بات کرتے کرتے مجھے انتہائی ایک وحشت ناک واقعہ یاد آیا. میں تھوڑی پرانی بات ہے سلمان بھائی،
جی
میں آ رہا تھا، میں کہیں راستے رش میں پھنسا ہوا تھا، تو گاڑی تھی جس میں پولیس والا تھا اور اس کے آگے ایک ویگن تھی. اب وہ رش تھا، ویگن بھی کھڑی ہو گئی، ویگن تو ویگن ہوتی ہے. اس نے اتر کر جو اس کو گن کا وہ اس کو کیا بولتے بٹ جو مارا ہے نا، وہ میرے کو بس وہ یاد رہ جاتا ہے. میں کہا یار خالی اس کو ہٹانے کے لیے یہ کر رہا تھا، تو وہ جو اس پہ برداشت تھی وین والے برداشت تھی وہ مرد کا بچہ ہٹا نہیں،
وہ بھی نہیں ہٹا.
میں دیکھ رہا تھا، اتنی تو اپنے میں طاقت تھی نہیں کہ اتر کر ہم کچھ کرتے وغیرہ، بات کرتے کہ یہ کیا. لیکن اب ابھی تو خیر مجھے ابھی روڈ سڑکوں کا حال نہیں پتا، لیکن اب اگر وہی حال ہے جو ہر سال ہوتا ہے لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد کے، لوگ دوڑ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں گھر کی طرف، تو اب سگنلوں پر جو حال دیکھا گیا ہے برداشت نہیں ہے. یعنی اتنی بے صبری ہے کہ جہاز جب رن وے پر اترتا ہے تو لوگ جہاز کے رکنے کا بھی انتظار نہیں کرتے. ایسا تھوڑی کہ چلتے جہاز میں گیٹ کھلے گا بس ہے آپ جمپ مار کر اتر جاؤ گے، جہاز رکے گا، سوئچ آف ہوگا، لائٹ آف ہوتی ہے. اچھا لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں بیگ لے کر، ارے جہاں کھڑا تھا نا وہیں کھڑا ہے 10-15 منٹ تک. اچھا اب جو کھڑا ہے نا، اب چونکہ یہ خود ہی کھڑا ہوا تھا، اس کو تھوڑی کہا تھا جہاز والے نے کہ کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے آپ کی باری آتی ہے تو آپ کھڑے ہو جاتے، بیگ نکالتے ہو چل پڑتے. نہ یہ کھڑا ہو گیا، اب 10 منٹ تک ہے گیٹ کھل نہیں رہا ہے. اب یہ جناب یہ جو اندر میں جو چیخ رہا ہے نا، اچھا جو جہاز کے اندر کا جو اسٹاف ہے نا اس کو باہر کے معاملے میں اتنی انٹرفیئر نہیں ہوتی، یہ کن کی کوئی تقسیم ہے وہ نہیں کرتے. یوں اب دیکھا کہ جہاز چلنے سے پہلے ایک اعلان ہو جاتا ہے کہ گراؤنڈ اسٹاف باہر نکل جائیں. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے तो इसमें देखने की बात ये होती है कि हमारे यहाँ बर्दाश्त नहीं है, और मतलब बाद वक्त चीखने चिल्लाने और अदम बर्दाश्त के ताल्लुक से ऐसा नहीं होता कि अगर हम ये काम करेंगे तो वो चीज जल्दी हो जाएगी या वो मतलब कि मामला दुरुस्त हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, ट्रेन लेट हो गई है, आप यकीन मान ले आप आपके चीखने चिल्लाने शोर मचाने टीटी को बोलने तो वो स्टेशन इंचार्ज को बोलने से बस जाहिर कुछ भी नहीं होना, वो ट्रेन ने जिस जहां वो फंसी वहां फंसी है, जब आना है उसने आना है।
नहीं, ये ठीक आप कह रहे हैं, नहीं आनी, शोर मचाने से नहीं आनी, लेकिन आप देखें कुछ चीजें होती है ना कि नसीहत बंदे को हो जाती है, यार आइंदा हमने यूं काम किया ना, ट्रेन लेट की तो इस तरह से मतलब भाड़ा हुड़ी हो जाएगी,
नहीं, लेकिन
यानी कुछ अगले जो प्रॉब्लम्स हों उनको मतलब ठीक करने के लिए तो काम ही बना लिया पकड़
अगर
लिया।
ये सारे के सारे शोर मचाना और लड़ना झगड़ना तोड़फोड़ करना शुरू कर दें तो फिर अमन तो रहा ही नहीं ना। हर कंप्लेंट, किसी भी कंप्लेंट को रिकॉर्ड करना है आपको, तो उसका एक वे है, और आपने अपना काम कर दिया, अब छुट्टे पड़े, दुआ करें अल्लाह ताला हालात बदल दे, जिम्मेदार बदल दे, ओहदेदार बदल दे, आप इसके लिए काम कर सकते हैं ना। यानी मैं ही अर्ज कर रहा हूँ कि आप बस में जाएं तो आपको लड़ाई झगड़ा मिलेगा, बस स्टॉप पर आपको लड़ाई झगड़ा मिलेगा, रक्शे वाला पैसेंजर से लड़ रहा है, पैसेंजर वाला रक्शे से लड़ रहा है, टैक्सी वाला पैसेंजर से लड़ रहा है, वो पैसे वाला जल्दी वक्त कदर चला उड़ के ले जाऊं ट्रैफिक है तो वो गाड़ी में बैठ कर ट्रैफिक को कोस रहे हैं। यानी आप अगर ये देखिए तो बिला वजह की अपनी भड़ास निकालना, बिला वजह की चीखो पुकार, बिला वजह का लड़ाई झगड़ा, खुदा ना खास्ता किसी का पांव आपके पांव पर आ गया, मुझे बताओ उसका नतीजा क्या निकलता है। अरे भाई, तो मुस्कुरा कर को सबर करता है, को बर्दाश्त करता है, डायरेक्ट धक्का देंगे, अंधा है। अच्छा वो अब जूता खराब हो गया बेचारे का, पॉलिश खराब हो गई, बेचारा भी पॉलिश करके निकला था, क्या करेगा वो। तो हर जगह पर सलमान भाई इस तरह मतलब कि वो आपे से बाहर नहीं हुआ जाता, बर्दाश्त भी किया जाता। वो मिसाल के तौर पर एक जगह पड़ा, एक एक लड़के का इंटरव्यू था, अब वो इंटरव्यू जब होगा तो वो अपनी पूरी किट शिट के साथ ही आएगा तैयारी कर कर, क्योंकि उसने अपने ड्रेसिंग से भी मुतासर करना है, अपने डिस्कशन से भी मुतासर करना है। अब ये जब ऑफिस में आया जहां इसका इंटरव्यू था, तो एक शख्स कलर कर रहा था, ऑफिस तो कलर हो रहा था, हायरिंग हो रही थी, हायरिंग हो रही थी, जॉब भी रखी जा रही थी, ऑफिस का मेंटेनेंस भी जारी था, तो उसने वो सीढ़ी से यूं सीढ़ी पर खड़ा था, वो हटकर यूं दिख रहा था, वो दीवार पर रंग लगा हुआ था जो कि बाजू पे लग गया, अब वो तो रंग ही कर रहा था वो उसने उसके ऊपर चढ़ाई शुरू कर दी कि मेरी शर्ट खराब हो गई, तो मेरे कपड़े खराब हो गए, अब उसका क्या कसूर है ये मुझे बता दो। अब बहुत ज्यादा चीखेगा तो वो क्या करेगा, ऊपर से बाल्टी उसके ऊपर फेंक देगा, ले भैया अब मैं भी काम नहीं करता, तो हो गया क्या नतीजा, कुछ भी नहीं। तो अब बातचीत ऐसी होती है कि जी हाँ मतलब कि आदमी बस हो गया, अब बच्चा का तो रंग लग गया, अब इसमें बंदा अपनी जल्दबाजी को कोसे, अपनी बेहतियाती को कोसे, या जो होना था वो हो गया, लड़ने झगड़ने गालम गलोच करने माज अल्लाह इस तरह करने से क्या उसकी थोड़ी देर के बाद शर्ट पर जो कलर है वो हट जाएगा, नहीं हटेगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि बर्दाश्त जो है ना, बर्दाश्त ये बहुत ही अहम टॉपिक है, इसको इंग्लिश में क्या टॉलरेंट कहते हैं,
टॉलरेंस
टॉलरेंस कहते हैं, कुव्वत बर्दाश्त। तो अब अच्छा फिर हम जब इंसानों में रहते हैं तो जहां हमें कोई अच्छी चीजें मिलती हैं, तारीफ भी मिलती है तो बुराई भी मिलेगी, तनकीद भी मिलेगी, मिजाज के खिलाफ बात भी मिलेगी, सब कुछ होगा। अगर बंदे में सलमान भाई बर्दाश्त ही नहीं है ना,
जी
उसकी अपनी जिंदगी जो तबाह बर्बाद होती है ना,
दुरुस्त फरमाया आप,
और उसके अपने अखलाक जो तबाह बर्बाद होते हैं,
जी
इसका अंदाजा उसको शायद नहीं है।
दुरुस्त फरमाया आपने, मसला असल में हुजूर
और ये इंशाल्लाह देखना कॉले आएंगे ना,
जी
आपको बताएंगे कि बर्दाश्त ना होने की वजह से क्या होता है।
जी बिल्कुल, कत्लो गारत गिरी भी इसीलिए होती है, बंदा जब किसी की बात बर्दाश्त नहीं करता, कोई नेगेटिव बात कह दी, कोई इस तरह का मामला कर दिया, और उसको बंदा अगर बर्दाश्त नहीं करता तो आगे इंतहाई इकदाम की तरफ उठता है। लेकिन इसमें ये भी तो एक बात है ना कि आप एक बंदे का इम्तिहान लेते जा रहे हैं, जैसे घर में मिसाल लेट्स सपोज आप घर पर आ जाएं, घर से बाहर आ जाएं, आप काम कोई मतलब दुकान पे किसी पे काम करते हैं, अब एक बंदा आपको बार बार मतलब जिस तरह होता है ना, ये एक बंदे की कुछ लोगों की फितरत जो है ना वो होती है फांस की तरह की, आप मिसाल देते हैं ना कि वो चुभती रहती है जिसका काम है भाई, जब भी कुछ बोलेगा तो शरारा या अंगारा ही इसके मुंह से जो है वो निकलेगा और वो सामने वाले को ऐसी बात है, आग का काम जलाना होता है और जबान के जो जो होते हैं अल्फाज की बहुत जख्मी करते हैं। कितनी देर बंदा बर्दाश्त करे, घर में अगर किसी को इस तरह की बद अखलाकी का सामना है, किसी को भी मर्द को या औरत को, कितनी देर उसको बर्दाश्त किया जा सकता है। ये जो भाई हैं आपस में, अब एक भाई है उसका काम ही ये है कि उसने दूसरे भाई को जो है वो लताड़ना ही है, उसको दबाना ही है या उसको मतलब नीचे ही दिखाना है उसको, तो अब कितनी देर वो बेचारा बर्दाश्त करेगा,
क्या 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 करे
जी,
क्या करे,
नहीं उसको आईना तो दिखाना पड़ेगा कि आप देखें,
चलो कैसे देखें जी, कैसे देखें,
नहीं कोई इलाज, वो कहते हैं ना जी डंडा पीरे बिगड़िया तिगड़िया ना, जिसको कोई चीज सीधा नहीं कर ली फिर उसको डंडा ही जो है सीधा करेगा,
सारे डंडे उठा ले,
नहीं सब ना उठाए तो मैं भी नहीं कह सकता,
क्या करे वो क्या करे, हो जाता है बाद वक्त आदमी को टकरा जाता है ऐसा कोई, तो वो बर्दाश्त करता है, सफर में भी मिल जाता है बर्दाश्त करता है, बहुत ज्यादा फिर ये है कि कम रापता वास्ता रखे,
तो कोई ऐसा बताए ना कि ऐसा हाल बताए कि बस बंदा जो है ना वो सिचुएशन से आगे,
घर और घर के बाहर की सिचुएशन में फर्क है
जी,
घर के बाहर की सिचुएशन अगर ऐसी बनती है तो उसमें आदमी कतरा जाएगा, कम मिलेगा, कम बात करेगा, कम मिल मिलाप रखेगा
जी,
ठीक है ना, लेकिन जब घर के अंदर है तो घर में तो फिर सिवाय बर्दाश्त के, दुआ के, नेकी की दावत के, फिर अपने हुस्ने अखलाक, देखिए अखलाक और ये बर्दाश्त भी जो है ना, ये भी हुस्ने अखलाक की एक किस्म से है, सबर बर्दाश्त हौसला हिम्मत, तो अगर ये इस तरह के को अपने अखलाक से उसको इस्लाह करने की तरफ जाता है तो हो जाता है यार, मतलब कि इंसानी को कुत्ते की दुम तो है ही नहीं जो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी सीधी होती नहीं है, इंसान के अखलाक किरदार बदल जाता है। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुफारे मक्का के जो ज्यादतियां थी उसे जिस अंदाज से आपने अपने हिल्म के साथ और बुर्दबारी के साथ आपने उसको बर्दाश्त किया, आपने सबर किया, आखिर यही तो लोग थे जो आपकी जान के दुश्मन थे, आप पर जान कुर्बान करने वाले बने या ना बने यार,
बिल्कुल बने,
तो इसके पीछे आपको क्या नजर आएगा, एक बुनियादी वस्फ पाक
जी।
वो हील बुर्दबारी बर्दाश्त टॉलरेंस ये है या नहीं है
जी, बिल्कुल है,
तो इसका नतीजा हम देख रहे हैं ना, चाहे साहबा कराम ने बर्दाश्त किया या नहीं किया ये बताएं,
बिल्कुल किया,
सहाबियात ने बर्दाश्त किया या नहीं किया
जी, बिल्कुल जुल्म बर्दाश्त,
जो कुछ हुआ, लेकिन आप देखिए कि अल्टीमेट नतीजा खैर ही अब नजर आ रहा है,
वाह,
तो ये असल में हम सबको इस पर गौर करना है कि जो बुराई करने वाले की बुराई को भलाई से टालता है ये इंशाल्लाह इसको अल्लाह की रहमत से, सलमान अत्तारी मेरा अपना जबरदस्त इस पर यकीन है, जबरदस्त यकीन है कि उसको नतीजा लाजमी मिलेगा, फइज़ल लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलीयुन हमीम, ये नतीजा इंशाल्लाह वो देखेगा कि जबकि उसमें और उसमें दुश्मनी थी ऐसे हो जाएगा जैसे गहरा दोस्त, मगर उसके लिए इन दो वस्त की जरूरत है ना, आदतों की, एक आली मर्तबा हो और एक सबर वाला हो, आगे है ना
जी,
इसी आयत के आगे है कि ये नेमत नहीं मिलती मगर वो जो बुलंद मर्तबे वाले हैं
सही,
और वो जो सबर करने वाले हैं
सही,
तो आप सबर करें और बर्दाश्त करें, अल्लाह ने चाहा तो आपके दुश्मन आपके दोस्त बनेंगे,
वाह, अगर इसको दूसरे एक सिनेरियो पे ले जाएं आपकी इसी बात को कि अगर बर्दाश्त करने की आदत नहीं है या आप किसी की बात सुनकर उस पे आप उसको टॉलरेट नहीं कर रहे और आगे से आप उसको मतलब क्वालिटी के साथ उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और सख्ती के साथ जवाब दे रहे हैं, तो फिर इसका उलट भी हो सकता है, दोस्त दुश्मन अपने पराये हो सकते हैं,
भाई बीवी चली जाती है, तलाक हो जाती है बर्दाश्त ना करने पर, माँ बाप मतलब के बच्चे को निकाल देते बर्दाश्त ना करने पर, बच्चा घर छोड़ देता है बर्दाश्त ना करने पर, ग्राहक चला जाता है बर्दाश्त ना करने पर, कम ही आपको दुकानदार मिलेंगे जो बर्दाश्त नहीं करते, जो बर्दाश्त नहीं करते वो कस्टमर कस्टमर तो आपका इम्तिहान ले ही रहा होता है, ये दिखा दो वो दिखा दो, आप बर्दाश्त कर ही रहे तो अच्छा नहीं लेता, दूसरा कस्टमर पीछे खड़ा हो उसको भी जी हुजूर जी हुजूर जी हुजूर, वो उसको पता है कि ये मैं भले ना ले लेकिन मेरी अखलाक से ये दोबारा मुड़ कर आएगा मेरे पास।
वाह,
तो आदमी पैसा कमाने के लिए बर्दाश्त कर सकता है, क्या सवाब कमाने के लिए सलमान भाई बर्दाश्त नहीं करेगा?
सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी बात कही आपने। इसी यही बात, बर्दाश्त का मतलब क्या है कि क्या बंदा खामोश हो जाए, भाई जो भी कह रहा है बुरी बात बोल रहा है या कुछ भी कर रहा है, मिजाज के खिलाफ बात कर रहा है, टॉन्ट कर रहा है, तनकीद कर रहा है, तंज के निश्तर चला रहा है, बंदा क्या चुप चुप करके बैठा रहे?
किस्में, मेरे मुझे लगता है कि इसमें इसकी किस्में बनेंगी कि अब मिसाल के तौर पर खुदा ना खास्ता कोई तकलीफ दे रहा है, तो अब जैसे कि एक शख्स अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तकलीफ पहुंचा रहा था, ठीक है, लेकिन फरिश्ता जवाब दे रहा था।
जी हाँ जी,
जब आपने जवाब इरशाद फरमाया तो फरिश्ता चला गया।
इसी बात,
तो एक तो ये भी तो वक्त है ना कि आप खामोश रहें, अपने रब पर छोड़ें।
सुभान अल्लाह,
वो बेहतर,
अल्लाह अकबर,
वो सबसे बढ़कर बदला लेने वाला
मज़लूम
पर जो जुल्म करता है, क्योंकि बाज लोग मज़लूम जुल्म करते हैं और वो बर्दाश्त करे और अपने रब पर छोड़े।
सही,
रख मौला त्यास,
क्या बात,
ठीक है, रब पर छोड़े, रब अदल फरमाने वाला, रब इंसाफ फरमाने वाला, रब अपने मजलूम बंदे की दुआ कबूल करने वाला है, ठीक है ना, रब उसके लिए रास्ते बता देगा, रब उसके लिए बहुत सारी चीजों को, तो एक तो होता यह है कि बंदा चुप रह जाए और ना रिस्पॉन्ड, क्योंकि ऐसे मौके पर जब आपके साथ कोई ज्यादती कर रहा है ना, अगर आपने रिस्पॉन्ड किया तो वहां पर रिस्पॉन्ड करते वक्त जबान वो बेतरतीब हो जाती है, सोच की तरतीब बदल जाती है, ये याद रखिएगा, जब आपकी जबान की तरतीब बदल जाएगी, सोच की तरतीब बदल जाएगी, तो अब जो मुंह से निकलेगा ना वो इंतियाही गलत और बेतरतीब जुमले होंगे जो कल आपको शर्मिंदा कर सकते हैं। तो आप बर्दाश्त करें, दुआ करें, सब्र करें, और दूसरा होता है कि आदमी गलत बात सामने हो रही है उसका अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, वो सख्ती कर रहा है मगर वो सामने नरमी कर रहा है, क्योंकि होगा ये कि आपका काम ही नरमी कर रहा है, अगर मुबल्लिगी मुबल्लिग हैं तो आप सख्ती का जवाब सख्ती से सो नहीं ना देंगे आप। मुझे एक बात याद आ गई, एक शख्स नेकी की दावत दे रहा था किसी बिल्कुल समझे बेनमाजी शख्स और दीन के मामला से काफी दूर, उसकी और उसकी किसी मौजू पर बहस छिड़ गई, अब बहस छिड़ते छिड़ते वो जो बेनमाजी आदमी था वो थोड़ा चीखने लगा, तो जो वो जो नेकी की दावत देने वाला था उसने उससे ज्यादा चीखना शुरू कर दिया, दोनों में हो गई ठीक ठाक, मतलब आग से आग, वो पत्थर से पत्थर टकरा तो फिर चिंगारी उड़ती है। थोड़ी देर में वो जो बेनमाजी आदमी तो चुप हो गया, बिल्कुल सब साइलेंट जोन में चला गया, साइलेंट जोन में जाकर कहने लगा देखो भाई मैं तो वही जाई, मेरे को तो दिन की कोई समझ बुझे नहीं, मैं तो टेढ़ी मेढ़ी बातें करता रहता हूँ, तुम तो नेकी की दावत देने आए हो ना, मेरे को समझाने आए ना, तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो, तुम क्यों आप ऐसे बाहर हो रहे हो, तुम मुझे अच्छे तरीके से समझाओ, मुझे नरमी से समझाओ, प्यार से समझाओ। आप देखिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, बदबख्त तरीन शख्स था फिरौन, जब उसकी तरफ अल्लाह ताला ने जाने का हुक्म फरमाया तो क्या फरमाया,
फकूला लहू कौलन लयिना,
कि उससे नरम बात करना,
ऐसी बात,
ठीक है,
सही,
वरना उसके कुफर में क्या शक था।
दुरुस्त फरमाया आपने। यहाँ एक क्वेश्चन है, आपने कहा कि ये दो इसी इसी को हम ले लेते हैं, जैसे वो नमाज की दावत दे रहा है, आगे से वो
नमाज की दावत नहीं कोई और मौजूद
कर... कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी बात कर ले, अब आगे से वो, ये भी एक तरीका कार है ऐसा अगले बंदे को फंसाने का कि पहले मैं कोई बात करूंगा उस पर आप मुझे कुछ कहेंगे और मैं आपको तैश दिलाऊंगा। कुछ लोगों का काम होता है दूसरे को प्रवोक करना, बरांगेस्ता करना। अब जब वो प्रवोक हो गया, बरांगेस्ता हो गया, अब मैंने लेक्चर भी, एक तो मैंने आपको जो है ना वो जो बोलना था वो बोला, आपको बरांगेस्ता किया, प्रवोक किया, उभारा, गुस्सा दिलाया, और ऊपर से मैं आपको सबर का सबक भी मैं दे रहा हूं, यानी अपने आप को बीच में से साइड पे करके अगले बंदे को बीच में चक्की में जो है पीस रहे हैं।
मैंने एक नौजवान के बारे में पढ़ा था, किताबों में वाकया लिखा हुआ है, उसकी सलाहियत ये थी कि वो तेश में नहीं आता था।
वाह।
उसकी एक दोस्त के साथ बात हुई, बोले मैं देख इसको जज्बाती करता हूँ, इसको तेश में लाता हूँ, मैंने इसको मैं इसकी बर्दाश्त के मैं इम्तिहान लेता हूँ, उसका बर्दाश्त ना तोड़ दू तो मुझे कहना। क्या ठीक है, वो गया, उसे उसकी एक माँ थी, बेवा थी, उसने जाकर उसकी माँ के रिश्ते की बात की। अब आदमी माँ के रिश्ते की बात तो वो होता है, तो उसे यार फला है, उसे तुम्हारी माँ की शादी करा दो, ये करा दो, वो करा दो, उसने इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी बातें की कि वो अपनी माँ के नाम पर गुस्से में आ जाता। तो वो जवाब देता कि देखो मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी माँ गरीब है, जिसकी तो बात, वो बड़ा आदमी है, उसको कोई ऐसी ऐसी औरत से शादी करा दो, यूं कर दो, वो उसको एक पॉजिटिव समझ की तरफ लेके जा रहा था, वो उसको तेश में लाने के लिए और टेढ़ी बात कर रहा था। आखिरकार वो थक गया और वो तेश में नहीं आया, वो गुस्से में नहीं आया। और जब वो जाने लगा तो उसको बुलाया, क्या जाकर अपने दोस्तों को कह देना कि मैंने कोशिश की मगर उसको गुस्सा आया नहीं।
अल्लाह अल्लाह।
तो ये मुश्किल होता है, मैं नहीं कहता आसान है, लेकिन सलमान मदनी इस मिजाज के बगैर आप जी कैसे सकते हैं? आप अगर आप सुकून से जीना चाहते हो ना, अपने अंदर बर्दाश्त, हिल, बुर्दबारी, टॉलरेंस आपको पैदा तो करना पड़ेगा, वरना आप जिंदगी मुश्किल हो जाती है। एक बच्चा को उल्टी सीधी हरकत करता है तो वो गुस्सा आ जाता है, कोई घर में कोई कुछ बोले तो वो गुस्सा आ जाता है, तो थोड़ा चीखो पुकार तो गुस्सा आ जाता है, कोई दावत में थोड़ी सी वो हरा उड़ी हो जाए तो गुस्सा आ जाता है, पड़ोसी कुछ कर दे तो गुस्सा आ जाता है, पार्किंग टेढ़ी हो गई तो गुस्सा आ जाता है, लिफ्ट पर खड़ा हुआ लिफ्ट ऊपर नहीं आ रही लिफ्ट को लिफ्ट भेजो गुस्सा, उसको क्या पता लिफ्ट नीचे बंद पड़ी हुई है, लिफ्ट भेजो, वो गुस्सा आ जाता है उसको, अच्छा ड्राइवर रोक नहीं रहे बस को, दबे दब दबे दब दबे दब बस में मारे जा रोक रोक रोक,
और वो भी नहीं रोक,
वो भी नहीं रोकता, आगे बढ़ रहा, उसको नहीं समझ पड़ी होती, वो आधी हो गया टक 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 टक, उसको उसके कंडक्टर ने आधी कर दी है। देखिए वो कंडक्टर क्या साउंड समझता है, बाकी पैसेंजर का साउंड नहीं समझता वो। तो यू मतलब के गर्मी हो तो बर्दाश्त से बाहर है, सर्दी हो तो बर्दाश्त नहीं होती, हमारा बड़ा अजीब हाल है। तो आप मुझे बताए ना कि सिवाय बर्दाश्त के अब क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं, इसलाह कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, और अगर बहुत ज्यादा कुछ हो तो आप रास्ता बदल सकते हैं। बहुत ही जाहिल किस्म का आदमी आपसे जाहिलियत करता है तो कालु सलामा,
वाह
है, एराज कर लें उसे, है ना, दिया है ना हमको तरीके, रास्ते नहीं दिए, दिए उनको अमल करें। अब हम मतलब के गुस्से वाले के साथ गुस्सा, मार वाले के साथ मार, चीखने वाले के साथ चीखना, धक्का मारने वाले के साथ धक्का, तो अब ये तो मतलब वैसा तो नहीं है ना कि यार मतलब धक्के का बदला क्या, मगर धक्का खाली धक्के का बदला धक्का ही है, ये तो नहीं ना होता। आदमी करे स्पेशली जिसको इस्लाह करनी है, नेकी की दावत देनी है, मुस्लिह बनना है,
वो बात तो बीच में रहेगी ना सर, जो मैंने भाई एक तो गलती की और ऊपर से समझाना भी दूसरे को ही है,
नहीं अगला गलत पर था, अगर अगला मतलब के वो शख्स तेश में आ गया तो मुझे बताए चीखने से कभी किसी की इस्लाह हुई है यार?
तो आप तेश दिलाएंगे तो तेश ही आएगा ना,
तेश दिलाएंगे
बात करेंगे किसी को, बंदे को तकलीफ देना और ऊपर से उसे कहना कि तुम्हें तकलीफ तो नहीं हुई, या आप क्यों आप सबर करें, बर्दाश्त करें, क्यों आप आवाज निकाल रहे हैं, ये तो उसको और जख्मी करने वाली बात है।
अब वो रिवायत पे जाए ना, जैद बिन सना है रज़ी अल्लाह ताला,
जैद
बिन सना ईमान ले आए,
हाँ जी बिल्कुल,
क्या किया उन्होंने, नेगेटिव आए थे ना,
नेगेटिव ही आए
थे, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गुफ्तगू की थी वो दुरुस्त नहीं थी,
बिल्कुल दुरुस्त थी,
फारूक आजम को सुना, क्योंकि ऐसा बुजुर्ग अपने लिए तो बर्दाश्त करते हैं, बुजुर्ग अपने लिए बर्दाश्त करेंगे, लेकिन कभी मोतकीद और मोहब्बत करने वाला बुजुर्ग के लिए बर्दाश्त नहीं करेगा,
दुरुस्त
ठीक है। तो वो क्या था, वो आखिर सारा वाकया हुआ, उन्होंने यही कहा ना कि मैं यही देखने के लिए आया था कि जितना आपके साथ जहालत का बर्ताव किया जाएगा आपका हिल्म इसी कदर बढ़ता चला जाएगा। हमें रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस वस पर हत्तल मकदूर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। और कोई अगर हमको देश में लाने की कोशिश करता है, अगर मिसाल के तौर पर आ भी गए तो फिर रियलाइज भी तो करें ना, कहें यार मुझे नहीं आना चाहिए था,
ठीक
मुझे नहीं आना चाहिए था।
सही।
जहाज में पैसेंजर ये बदतमीजी जब भी करते हैं ना, बदतमीजियां करते हैं स्टाफ के साथ, केबिन क्रू के साथ। आपने कभी किसी केबिन क्रू को एक्सेप्ट, थोड़े बहुत केसेस होते होंगे, 100 में से 2-3 केस नेगेटिव चले जाते होंगे, मोस्टली आप इन केबिन क्रू को जो स्टाफ होता है इसको आप पैसेंजर से लड़ते हुए नहीं देखेंगे, वो मुस्कुरा कर चले जाएंगे। बहुत ज्यादा अगर उससे बर्दाश्त नहीं होगा ना तो वो जाकर अपने चीफ क्रू को कह देगा और वो आकर जी सर ये सर 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 कर करके उससे, उसको पता है मैंने 2.5-3-4 घंटे 12 घंटे निकालने, मैं अभी पैसेंजर से लड़के क्या करूंगा, तरबियत में नहीं है। आप मोबाइल कंपनी को फोन नहीं करते, बाप रे जान को आ जाते उसकी हम, और ऐसे सवाल करते हैं और कुछ कितना शुक्रिया अदा करते हैं, सब कुछ करते हैं, पैसा मिल रहा है ना इस काम के, इनको पैसे मिल रहे हैं। असल में पीछे तरबियत, ये जो केबिन क्रू है इसको बाकायदा बर्दाश्त करने की तरबियत दी गई है, इसको बदतमीजी को बर्दाश्त करने का, इसको बताया गया कि आप ये कहा गया कि अगला पैसेंजर तुमसे बदतमीजी करेगा आपने गुस्से में नहीं आना, आपने तेज में नहीं आना, आपने बर्दाश्त करना है, इस पर इसकी तरबियत की गई है। जब हम अपनी नौजवानों की, अपने बच्चों की और अपने बड़ों की, अपने तालीम इदारे में जब ये तरबियत करेंगे ना
जी,
तब ये बर्दाश्त पैदा होगा। ये खाली आपके मेरे बयान करने से सिर्फ बर्दाश्त पैदा हो जाए ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन असल इसमें तरबियत, औलाद की तरबियत आप बचपन से करें, उसको बर्दाश्त करवाएं, ये बढ़ाकर उसके अंदर हिम्मत आ जाएगी, उसके अंदर ताकत आ जाएगी, वो बहुत सारी चीजों को टॉलरेंट करेगा
जी, टॉलरेट करेगा। सही। कॉल शामिल करते आगे बढ़ते जी।
बर्दाश्त का टॉपिक हाजी साहब ने लिया, तो उसके हवाले से मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि हम लोग एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। हर कोई सोशल मीडिया पे एक दूसरे के खिलाफ लगा हुआ है, अगर कोई इनको समझाए कि आप अपना काम करो, हमें अपना करने दो, तो फिर दूसरे बंदे को ये बात बर्दाश्त नहीं होती और गालम गलोज का बाजार गर्म हो जाता है। अब हम समझाएं कैसे इनको।
ये मेरे मुस्तकिल कॉलर है, मेरे तकरीबन प्रोग्रामों में इन्होंने कॉल की है, माशाल्लाह देखते हैं। ये मसला ये है कि बहुत सारे काम लोग ऐसे जिन्हें समझाना इतना आसान नहीं रहा, मुश्किल है। मैं इसमें 2-3 मशवरे ये दूंगा। नंबर 1, किसी भी तरह के ग्रुप्स का कभी मेंबर बने ही नहीं, और जो चीज आपके मुतालिक है ही नहीं, आपसे ताल्लुक रखती ही नहीं है, आपका किस कदर कोई है ही नहीं, कंसर्न ही नहीं है, फिर वो आपके सामने आ जाती है तो फिर वो आदमी फिर आपे से बाहर हो जाता है। दूसरा ये होता है कि प्यारे इस्लाम भाई, वो फितने का दौर है। मेरा मशवरा तो यही है कि इन तरफ झांकना ही नहीं चाहिए। ये जो एक तादाद जो बेचारी फितनों में मुब्तला हो चुकी है, फितने उसको उचक रहे हैं, वरना होना ये चाहिए कि पढ़े ही ना बंदा इन चीजों में और बस दुआ करता रहे, या अल्लाह मेरा ईमान सलामत रख, मेरा ईमान सलामत रख। यानी ये वो दौर है प्यारे इस्लामी भाई, मैं को बताऊं, जितना बंदा साइड लाइन से निकल जाए ना इतना अच्छा है। यानी फितनों का ट्रैफिक है, फितनों का ट्रैफिक जाम है। आप ये मेन रोड पर आओगे, फितने ही फितने, इतने फितने। ये साइडों की कुछ सर्विस रोड जो है ना वो कुछ खाली है, वहां से मेरा खाली इस वक्त निकल जाना चाहिए। और ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये क्योंकि आप सबको अपने मफादात की, किसी हद तक सबसे मुराद एक तादाद अपने मफादात की पड़ी हुई है, कोई हक कबूल करने, हक सुनने, हक समझने, हक को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, हक बात भी ना हक अंदाज से की जा रही है। ये सारी चीजें जब लगी हुई हैं तो फिर, और फिर तरबियत नहीं है, मैं उसी पर आऊंगा, तरबियत नहीं तो बर्दाश्त कहां से होगा। फिर ये लड़ेंगे झगड़ेंगे, सोशल मीडिया पर भी झगड़ेंगे तो चैनलों पर भी झगड़ा करेंगे, लड़ाया करेंगे, पता नहीं हाथापाइयां भी करते हो, मारधार भी करते हो, तो इनका कुछ नहीं कह सकते। तो इसे कोई तरबियत नहीं है पीछे से।
अच्छा चले, आप तरबियत की बात आप कर रहे हैं, ये मुझे बताएं, کہ کالج لیول کے جو طلبا ہوتے ہیں اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں ان کے استاد ان کی کیا تربیت کریں, تو استادوں کو کوٹ ڈالتے ہیں, استادوں کو پکڑ کے مارتے ہیں, دھمکیاں لگا دیتے ہیں, کیا حل کیسے تربیت کریں؟ چلیں آپ آج یہ بتائیں.
شروع سے دیکھیں تربیت ہوگی قرآن بیان کرنے سے, تربیت ہوگی حدیث بیان کرنے سے, تربیت ہوگی فضائل بیان کرنے سے, تربیت ہوگی اس کام کے کرنے کے نقصان بیان کرنے سے, تربیت ہوگی اس کام کو کرنے کے فوائد بیان کرنے, یعنی کہ اگر آپ عدم برداشت کریں گے تو یہ نقصان ہے, برداشت کریں گے تو یہ فائدہ ہے, تربیت ہوگی سیرت کے بیان کرنے سے, تربیت ہوگی صحابہ کرام کی سیرت بیان کرنے سے. یعنی تربیت کے لیے یہی ہو بھائی, آپ اس وقت کسی کو سائنسدان بنانا چاہتے ہیں, سائنٹسٹ, اس کے سامنے آپ ان سائنٹسٹ کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے کام کیا, آپ نے صرف نو پڑھی ہے, کبھی صفے کا ذکر تو کبھی کس کا ذکر, کبھی کس کا ذکر کر کر کے آپ کی ہماری گردانے بڑھاتے رہے کہ جناب یہ بنیں گے وہ بنیں گے, آپ علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ کا ذکر کرتے رہے ہمارے اساتذہ ہمارے سامنے, بھائی کیا, کیونکہ علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ کا ذکر مطالعہ بڑھانے کے لیے, غوث پاک کا ذکر کرتے تاکہ اس کے اندر علم دین سیکھنے کی جستجو بڑھے, یہ اولیاء کرام کا ذکر, یہ جو ذکر کرتے کیا ہے, موٹیویٹ کرتا ہے نا, آپ کے اندر ایک چیز لاتا ہے, تو برداشت اس طرح آئے گا جب تک ہم ان عنوانات کو اپنے لیکچر کا حصہ نہیں بنائیں گے, تربیت کیسی ہوگی. اسی طرح آپ کہ استاد کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, تو استاد اپنے بارے میں حسب ضرورت ادب بیان کر سکتا ہے, اور ماشاءاللہ آپ دیکھیے ہمارے یہاں علم دین میں اساتذہ کا ادب کیا جاتا ہے, ایسا نہیں کیا جاتا, شروع سے بتا دیا گیا طالب علم کو, جب ہم جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیتے ہیں درس نظام میں, جب ہم نے شروع کیا, ہم نے جب پڑھائی شروع کی, ہمیں شروع سے سمجھا دیا گیا تھا کہ علم کا نفع اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک تم استاد کا ادب نہیں کرو گے. نتیجہ کیا نکلا کہ شاگرد بھاگ بھاگ کر اپنے استاد کی جوتیاں اٹھاتے تھے تاکہ ہم لے کر چلے جائیں. یہ ادب ہے نا, یعنی کہ خلیفہ ہارون رشید کے دو بیٹے تھے جو امام قصائی یا قصائی امام قصائی امام قصائی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس پڑھتے تھے, تو جب وہ اٹھے تو دونوں بھائیوں میں اس بات پر اختلاف ہو گیا کہ استاد صاحب کو جوتے کون پہنائے گا. اب اس میں دونوں ہو رہا تھا تو یہ فیصلہ یہ ہوا کہ ایک آپ پہنا دو ایک میں پہنا دو, دونوں نے پہنا دیا, تو خلیفہ ہارون رشید یہ منظر دیکھ رہا تھا, اس نے حضرت کو دربار میں آئے, سوال جواب, حضور عزت کس کی؟ تو نے کہا حضور عزت خلیفہ, یہ بولا عزت تو اس کی کہ خلیفہ کے دو بیٹے اس بات پر جھگڑا کریں کہ جوتے کون پہنائے گا, عزت تو حضور اس کی ہوتی ہے, اور میں آپ کو تاکید کرتا ہوں کہ میرے بچوں کو آپ ان سعادتوں سے محروم نہیں کریں گے. یہ باپ نے وقت کے خلیفہ نے ایک عالم صاحب کی عزت پر عزت کرنے پر اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کی, اور استاد صاحب کو کہا کہ آپ میرے بچوں کو آپ کی عزت کرنے اور یہ احترام کرنے سے روکیں گے نہیں, کیونکہ ان کے اندر کا وہ جوہر نکلے گا, اس سے جوہر نکلتا ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں سلمان بھائی تربیت, جو میں تربیت پورا مہینہ نکل گیا مجھے تقریباً یہ کہتے ہوئے کہ تربیت کرنا بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے آپ کو پین لینا پڑے گا. تو انشاءاللہ جب آپ اپنے بچے کے اندر برداشت پیدا کریں تو آپ کا بچہ آپ کو بھی برداشت کرے گا نا, عدم برداشت ہوگی تو آپ کو بھی برداشت نہیں کرے گا.
ہائے ہائے ہائے, کیا حساب آپ نے بات کی ہے. اور یہ باقی والدین بھی بعض اوقات جو ہے وہ اولاد سے ڈر رہے ہوتے ہیں, یہ
بھائی وہ سامنے بدتمیزی کرتا ہے نا, برداشت, اس کو کچھ بولو سامنے جواب دے دیتا ہے,
جی
کیسے جواب, کیونکہ اس کی ہم نے تربیت نہیں کی.
صحیح,
اگر اس کی تربیت کرتے تو اولاً وہ آپ کو جواب ہی نہ دیتا, ماں باپ کی سختی پر وہ برداشت کرتا.
ایسی بات,
آج والدین سختی تو کر ہی دیتے ہیں,
جی بالکل,
درست یا غلط ماں باپ سے سختی ہو جاتی ہے, اولاد کیونکہ تربیت نہیں تھی اس کی, اس نے اسے سختی کو برداشت نہیں کیا اور سامنے بدتمیزی کی اور اپنی آخرت کو اسے داؤ پہ لگا دیا.
اللہ رحمت فرمائے. مزید کال شامل کرتے, جی
شورا کی نگران کی بارگاہ میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں ہم لوگ جو ہے کام کرتے تھے سیل کا، تو ڈرائیور نے کسی دکان کے آگے گاڑی کھڑی کر دی، تو وہ لڑکا تقریباً اس کی عمر 30 سال کے قریب ہوگی اور جو ڈرائیور تھا میرے ساتھ اس کی عمر تقریباً 45 سال، تو وہ اتنا غصے میں بھپرا ہوا تھا، آپے سے باہر ہو رہا تھا اور اس نے اتنی گالیاں بکھی غلط قسم کی ڈرائیور کو کہ کوئی اور ہوتا تو آپے سے باہر ہو جاتا، لیکن انہوں نے صرف ہاتھ جوڑا اور مسکراتے ہوئے کہا کہ غلطی ہو گئی معاف کر دو، بس یہ الفاظ ایسے جادو کی طرح اثر انداز ہوئے اس لڑکے پر، اور وہ یہ سنتے کے ساتھ ہی ستے سے آ گیا اور پھر جو ہے گلے لگانے کی کوئی بات نہیں، اور بس غصہ آ جاتا ہے ہمیں، لوگ جو ہے ہماری دکان کے آگے گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض اوقات بندہ سامنے والا اگر آپے سے باہر ہو اور اس کے سامنے والا جو ہے نرمی سے گفتگو کرے اور عاجزی سے، تو سامنے والا متاثر ہو جاتا، اور بھی کوئی واقعات ایسے میری زندگی میں گزرے ہیں اس طرح کے اور میں نے دیکھا ہے، اور اس میں بڑا مزہ بھی آتا ہے بعض اوقات کے سامنے والا آپے سے باہر ہو اور ہم اس کے ساتھ بالکل عاجزی اور انکساری سے پیش آئے تو حالت ایک دم تبدیل ہو جاتی ہے، جزاک اللہ خیرا.
آمین. آگ کو بجھانے کے لیے ہم نے پانی ہی دیکھا ہے، آگ کبھی آگ سے نہیں بجھتی، تو جب آگ پر پانی ڈالا گیا تو آگ بجھ جاتی ہے، تو جب بھی کوئی اس طرح آپے سے باہر ہو رہا ہے تو وہ گویا کہ غصے کی آگ میں، عدم برداشت کی آگ میں وہ جل رہا ہے، آپ برداشت کا اس کے اوپر پانی ڈال دیں گے تو انشاءاللہ اس کو فرق پڑ جائے گا اور وہ نرم ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا واقعہ تھا اور اس میں سمجھنے اور سیکھنے کا تھا بھی تھا، اور سامنے والے کو بھی چاہیے کہ مطلب لوگ جیسا بھی سلمان بھائی نے کہا ہر ایک برداشت کا ہم نے امتحان لینے کی، تو ہم نے کوئی ٹھیکہ تو نہیں دریا ہوا ہے،
جی جی بالکل،
دیکھیں کتنا خوش ہو رہے ہیں یا سلمان بھائی کہ آیا چلو بات تو آئی وہ والی، تو ہم بھی کوشش کریں کہ ہر ایک کے برداشت کا امتحان لینے کا ہم نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا ہے، ہر کوئی اس بات کے لیے ہے نہیں کہ وہ مطلب حساب کتاب لیتے تو برداشت کتنا ہے، ہر آدمی متصل بنے گا تو کیسے کام چلے گا.
آپ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات چیخ تو سنائی دیتی ہے بندے کو، لیکن اس چیخ کے پیچھے جو تھپڑ ہوتا ہے وہ بندہ جو ہے وہ بھول جاتا، وہ بھی نہیں بھولنا چاہیے اور یہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے، اچھے کام کریں اچھے پھل پائیں گے انشاءاللہ. مزید کال شامل کرتے ہیں.
جی آپ اور سے بات کر رہا ہوں. ہمارے محلے میں ایک خاندان نے اپنی بیوی کو ایک تھپڑ لگا دیا تھا، تو اس نے برداشت نہیں کیا اور برداشت نہ کرتے ہوئے اپنے سے باہر ہوتے ہوئے اس نے اپنی می کے فون کیا، انہوں نے بھی برداشت نہ کیا اور وہ سواری لے کر کار وغیرہ لے کر آگے اور اسے اپنے ساتھ دے گئے. نہ برداشت کرنے کی وجہ سے ایک گھر اجڑنے کی طرف جا رہا ہے.
اگر جو اسے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بیوی پر تو ہاتھ اٹھانا سمجھ سے باہر ہے کہ بیوی پر عورت پر کیسے بندہ یوں ہاتھ اٹھا دے گا، تھپڑ مار دیتے ہیں یار، بال کھینچتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، تو اس کی تو ظاہر بات ہے کہ ایک مذمت کی جائے گی کہ جو ایک شرعی حدود ہیں اس شرعی حدود میں لے کر شوہر ایک سختی کا انداز اختیار کر سکتا ہے. اگر بیوی برداشت کر لیتی تو شاید یہ مسائل نہ ہوتے. ٹھیک ہے خود غلطی کی اس نے کہ آپ کو اس طرح اسے مارا، لیکن کہ ہر جرم کی سزا سزا موت ہے؟ کہ ہر غلطی کی سزا چھوڑ کر چلے جانا ہے؟ آپ اس کو شرمندہ ہونے کا موقع تو دیں، اس کو ریئلائز ہونے دیں، وہ انشاءاللہ آپ سے معافی مانگتا. آج ہی تو کل ضروری تو نہیں کہ معافی باندھا فوراً ہی مانگ لے گا، بعض اوقات باندھے کو تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے ریئلائز ہونے. اسی طرح عورت بعض اوقات شوہر کے ساتھ بد اخلاقی بدتمیزی کر دیتی ہے، شوہر بد عورت کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ بعض اوقات جیسا ہوتا ہے بولنا کیا چاہتی ہے اس کے منہ سے نکل کچھ اور جاتا ہے. اگر مرد یہ ساری چیزیں نہیں جانتا تو بھی کیا جانتا ہے، اگر اسے شادی بھی کر لی ہے گھر میں عورتیں بھی ہیں تو عورتوں کے طبیعت کو مزاج کو سمجھے نہیں سمجھے گا کہ باپ اپنی بیٹیوں کے بیوی کے ماں کے مزاج کو ایک مرد جو گھر کے اندر وہ سمجھے گا نہیں اس نہیں سمجھے گا تو پھر وہی برداشت ہوگا نہیں اور مارا ماری لڑا لڑی ہو جائے گی. عورت کے بارے میں بھی ہمیں سمجھا دیا گیا ہے، عورت کو مرد کے حقوق کے بارے میں بھی سمجھا دیا گیا ہے.
بالکل.
تو ہمیں چاہیے کہ ہم یوں مطلب کہ فوراً توڑ پھوڑ نہ کر دیں، لڑ نہ پڑے گھر کے اندر، مہربانی کریں، برداشت کریں اور ہمت سے کام لیں اور صبر کریں، اللہ نے چاہ تو گھر بھی آباد ہو ہی جاتے ہیں. یار
ہمیں تو بڑا پیارا سبق دیا قرآن ہے سر، امساک بمعروف او تصریح باحسان، یعنی جو بھی کرنا ہے بھلائی کے ساتھ ہی کرنا ہے. अच्छा यहाँ एक और बात, ये इसी सिचुएशन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन है, अगर फोन आता है, बहन का फोन आता है भाई को कि आज मेरे जो है ना वो खामिंद ने मेरे साथ ये मतलब मामला किया, मुझे थप्पड़ मार दिया है या इस तरह का कोई मिसबिहेव किया, तो अब ये भाई क्या करे, बाप को फोन आ गया, बाप क्या करे, माँ को फोन आ गया, ये माँ क्या करे, क्या ये उसकी इमदाद को पीछे से ना पहुंचे? भाई हम देखते हैं कैसे हाथ उठाया, भाई कोई लावारिस की टीम थोड़ी है जो जिसका जो दिल मर्जी जो दिल करे करता रहे।
दो तीन चीजें बहुत मैक्सिमम एक सूरत बनती है कि जब बेटी अपने वालिद या भाइयों को इन्वॉल्व करे। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि छोटे मोटे मामलात में अपनी वालिद और भाई बहनों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए।
ठीक,
मैंने आज असर के बाद एक बयान जो मैं करता हूँ उसमें मैंने यही अर्ज किया है, इस्लामी बहनों से मैंने अर्ज किया है कि जो बेटियां शादियां करके जा चुकी हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त यही है कि अब ये जहन बना लो कि अब घर आपने चलाना है। जब आपके भाई बहनों में और आपके घर वालों में जब लड़ाई हुई थी शादी से पहले, तो आपने किसको फोन किया था? तुम्हें किया था?
किसी को नहीं किया था। बात
वो दो चार दिनों में एक दो घंटों में आपने आप एडजस्ट हो गए, तो वहां भी फोन करने का क्या फायदा? अब ये जहन बनाना जरूरी है कि अब यही मेरा घर है, अब यही मेरा कुंबा है और मैं स्विच हो चुकी हूं, और आपके वालिदैन को भी राहत इसी में। हाँ, खुदा ना खास्ता कोई बहुत ही इमरजेंसी या सीरियस केस ऐसा हो चुका है कि आपको लगता है कि आप मतलब के वालिदैन को इन्वॉल्व होना चाहिए, तो वो एक अलग टॉपिक होता है, वो भी इन्वॉल्व हो, फिर वालिदैन भी जज्बात में आकर ना करें, जाए सुने, जाते मारदार ना कर दें पर क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, खाली बेटी की बात सुनकर आप अपने बेटी के ससुराल वालों पर चढ़ाई कर देंगे, ये भी दुरुस्त नहीं है। बातों का बेटी हो सकता है कि आपको हकीकत ना बताती हो, ये भी हो सकता है, लेकिन
हमारी बच्ची तो झूठ नहीं बोलती।
नहीं,
ये भी लोग कहते हैं
तो आपने कौन सा फरिश्ता दिया था शादी के लिए? मतलब बेटी है और जब आपके घर में थी तब तब तक झूठ बोल देती, तब आपको नहीं पता चलता बेटी झूठ नहीं बोलती। कभी 20 साल में देखा कि बेटी ने एक बार भी झूठ नहीं बोला? तो वो मतलब ऐसा नहीं होता कि बाद-वक़्त बातें चुप जाती हैं, नहीं जाहिर होती। मेरे
अपना कसूर बता देंगे सर, फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी ना। जैसे दो बंदों का आपस में प्रॉब्लम है, अब मैं बता दूं मैंने उनको ये बोला था इसलिए उन्होंने ये बोला, फिर तो बात ही खत्म होगी ना।
बात ही खत्म करनी थी ना, बात बढ़ानी थोड़ी थी। जब बात खत्म ही करनी है तो बात वही खत्म होती है। मैं यही अर्थ करना चाह रहा हूँ कि बेटी ये जहन बना ले कि ये है, और ससुराल वाले ये जहन बना ले कि हमने वो सुलूक करना ही नहीं है कि इसको इसके माँ बाप याद आए यार। मैं तो कहता हूँ कि अपनी बहू के साथ शादी के बाद बेटी के साथ ऐसा सुलूक करो कि वो ये कहे कि यार फैसला करना उसके लिए मुश्किल हो जाए कि मैं ज्यादा कहां राहत में थी, अपने माँ बाप के घर पे कि अपने ससुराल के अंदर।
वाह वाह वा।
ये एटीट्यूड ये बच्चियों के साथ ऐसा सुलूक
क्या बात
होना चाहिए यार, कि मतलब उसको माँ बाप याद क्यों है? ये फितरी चीज है, माँ बाप तो याद आएंगे जब उसके साथ ऐसी चीज होगी, उसको माँ बाप याद आएंगे, क्योंकि घर में कुछ होता था तो उसको थोड़ी देर का माँ बाप मनाने चले भी जाते थे, अब यहाँ तो मनाने मनाना तो आएगा नहीं, और ये कहेगा जनाब ये तो ऐसा हो ही नहीं। वो भी अपने माँ बाप जैसा घर समझ के चले कि मैंने अब यहाँ रहना है और जो भी ऊंच नीचे मैंने बर्दाश्त करना है, और हम मिलजुल कर एक दूसरे की इस्लाह करते करते घर चला लेंगे, और उनको चाहिए कि इस बेटी के साथ ऐसा सुलूक करें कि वो वाकई ये कहने पर मजबूर हो जाए, यानी माँ बाप के पास आकर कहे कि मुझे वहां इतना प्यार मिल रहा है कि क्या मैं समझ रही कि माँ बाप इतना भी कोई प्यार करता है किसी से?
सुभान अल्लाह।
इसी ये अगर जो हो सकता है कि मेरी बातें कहने की हद तक ही हो, लेकिन इसका जितना परसेंटेज अमल हो जाए, घर आपके ही सुकून से चलेंगे। अगर आप हमारी बात मानते हैं तो घर आपके सुकून से चलेंगे।
अरे ऐसी बात होगा,
जो चीनी बेचता है जो उसको इस्तेमाल करेगा तो मीठा तो उसी का खाना पीना होना है।
ऐसी बात,
मैं आपको गुड़ शक्कर शहद दे रहा हूँ ले लो,
वाह
अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपका भला होना है, जिंदगी में आप ही की खुशियां मिठास आ जानी है।
सही क्वेश्चन है, लेकिन इसी सिनेरियो में है जो
अभी तक आप कर क्या रहे हैं भैया, क्वेश्चन ही तो कर रहे हो।
लेकिन वो इस टॉपिक पर नहीं है लेकिन रिलेट करता है। इसमें एक ये बात भी होती है कि मेरे माँ बाप ने तो मुझे यूं रखा हुआ था, मेरे बहन भाई ने तो मुझे यूं रखा हुआ था, तो आप लोगों ने मुझे यूं रखा हुआ है, इस तरह अगर किसी मतलब बच्ची की शादी हो गई और वो अपने ससुराल में जाके अपने ससुराल वालों को या अपनी सास को यूं बोले या अपने शोहर को यूं बोले कि मेरा भाई तो मेरी जो है वो बात जबान से निकलने से पहले पूरी कर देता था।
ऐसा भाई है किधर आजकल, बहुत कम मिलते हैं ऐसे भाई वैसे। हाँ, वजन वजन से कहीं मिलता हो तो मिलता हो, बाकी ऐसे वैसे भाई मिलते बहुत मुश्किल है।
मुझे
कई जगह पर नहीं
है हमारे साथ,
कई जगहों पर तो शोहर मुंह से निकलने से पहले बीवी की ख्वाहिश पूरी कर देता है। भाइयों ने तो कभी बदौकत पूछा भी नहीं तो बहनों को, ये जरूरी नहीं होता। कई ऐसी बहनें मुझे सुन रही होंगी जो तरसती होंगी कि हमको हमारा भाई पूछे। ऐसी बहनें कई सुन रही होंगी, शायद इनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे कि काश हमारा भाई हमको पूछता। ये नहीं है, बातों का ये नहीं होता। अब अगर मिसाल ऐसा है भी तो भाई उस घर में आपका भाई थोड़ी है, शोर को भाई थोड़ी है, शोर तो शोर है ना, ठीक है ना। तो अब वो शोर बाप थोड़ी है, मेरा बाप मेरे बोलने से तो वो शोर तो बोलेगा वो बाप था भाई, मैं तेरा बाप थोड़ी हूं, मैं शोर हूं। तो ये होता है, इसमें ऐसा ना करे। बादों का ऐसा होता है जिस घर से वो गई है वहां पर पकाने वाले भी थे, लेकिन अब जिस घर में गई है क्या वहां भी पकाने वाले होंगे? बोले हमारे तो, हमें तो पकाने वाले थे, तो वो ये कहेंगे भाई तो बेसिक घर पे शादी करते जब पकाने वाले थे। मैं इतनी बात जानता हूं कि आपकी जिंदगी स्विच हो गई है,
सही,
आपकी जिंदगी स्विच हो गई है। मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान से शिफ्ट हो जाएं किसी और मुल्क के अंदर, तो आप क्या वहां पाकिस्तान वाली जिंदगी गुजारेंगे? वहां के कानून, वहां के उसूल, वहां के तरीकेकार। अब मिसाल के तौर पर अमरीका ले लें आप, अमरीका इतना दुनिया का अमीर और मशहूर मुल्क कहलाता है। अमरीका के अंदर लोग घरों में काम वाली ये नहीं रख पाते, एफोर्ड ही नहीं कर पाते। ऐसे कई घर मिलेंगे नहीं कहते, वहां बच्चियां, यानी बच्चियां अगर अमरीका चली गई हैं तो उनको अपने काम खुद करने पड़ते हैं। जहां बच्ची ने कभी गिलास ही उठाएगा वहां वहां बच्चों को नौकरियां तक करनी पड़ती हैं। तो जब तक ये मिलकर नौकरियां नहीं करेंगे इनके घर नहीं चलते। तो क्या ये एक जैसा हो गया? ये आप अरब ममालिक में जाए, उनके कवानीन, उनके अपने उसूल हैं, उनके अपने घर बार के और किरायों के अपने उसूल हैं। आदमी कितने मुल्क ऐसे हैं सलमान भाई, आदमी 40-40 साल वहां पर अपना बिजनेस खड़ा करता है लेकिन उसकी मिल्कियत में कुछ नहीं है। 50-50 साल के बाद भी वो ऐसे आ जाता है जैसे रोड पर आ गया हो। तो मुल्क बदलते हैं, उनके कानून उसूल और तरीके कार बदलते, आदमी एडजस्ट होता ही नहीं होता।
बिल्कुल होता,
करोड़ों लोग अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्कों के अंदर बैठे उस मुल्क के मुताबिक एडजस्ट हो रहे हैं।
ऐसी बात।
और आपको कहते हैं यार अपने मुल्क में ये वहां ये, हमको यार अब रहना है तो हमने किया है। तो इसी तरह एक घर से जब दूसरे घर में चेंज होती हो तो हर घर के कुछ ना कुछ कायदे कानून उसूल अलग अलग होते हैं। अब जब दूसरे घर में आए हो सकता है कि उसके उसूल कानून आपके उस पिछले घर के मुकाबले में ज्यादा आपके लिए वो राहत वाले हों, या हो सकता है कि कम राहत वाले हों, लेकिन चेंजेस तो आती है ना। जब चेंजेस आती है तो उसके साथ एडजस्ट होने के लिए आप अपने अंदर कुव्वत बर्दाश्त पैदा करें।
मदीना मदीना मरहबा जी, कॉल शामिल करते हैं।
अब्दुल गफूर बात कर रहा हूँ सरगोधा से। सवाल पूछना था कि एक बंदा बहुत परहेज करता है, नमाजी है, लेकिन उसे पैसे लेने हैं 10 वादे करता है, पूरा एक नहीं करता, वादों के बारे में बड़ा सख्त हुक्म है। तो क्या बंदा ये बर्दाश्त का मौजू चल रहा है, तो उसके बारे में क्या है? बंदे को खुद भी जरूरत है, इतनी दफा उससे पूछा है और बंदा रिस्पॉन्स नहीं
होता है,
नमाज भी पढ़ता है और पैसे भी नहीं दे रहा।
तो जरूरी नहीं है वादा खिलाफी हो, नमाज पढ़े, नमाज पढ़ना ही चाहिए। अगर खुदा ना खासा कोई नमाज नहीं पढ़ता तब भी वो वादा खिलाफी तो नहीं करेगा ना। लेकिन वादा खिलाफी किसको कहते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। जिस वक्त वो आपसे जबान कर रहा है कि मैं दूंगा, अगर उस वक्त उसकी नीयत है कि मैं दूंगा, फिर अगर उसकी सिचुएशन तब्दील हो जाती है, हालत बदल जाते, नहीं दे सकता, अब ये वादा खिलाफी नहीं है। वादा खिलाफी तब होती है कि ये आपको कहते वक्त उसको पक्का पता कि मैंने देना वेना है नहीं। अब ये जो आपको वादा कर रहा है ना, ये वादा खिलाफी है, ये झूठ बोल रहा है, ये गलत बयानी कर रहा है। तो एक तो ये हो, तो अब ये कि इसके लिए मैं आपको मशवरा देता हूं, आप दुआ करें और वज़ाइफ पढ़ें जिससे कर्ज वापस आ जाता है, पैसे वापस आ जाते हैं। ये 40 सुहानी इलाज, मदनी पंसूर है, इसमें एक से एक वजीफे लिखे हुए हैं। कोई एक पढ़े, दो पढ़े, तीन पढ़े, इस तरह तीन तीन चार चार किस्म के मुख्तसर मुख्तसर वज़ाइफ होते हैं, वो पढ़ें और आप उसके साथ कांटेक्ट में रहें। अगर ऐसा आदमी फोन ही ना उठाए तो क्या करेंगे, मुलाकात ही ना करे तो क्या करेंगे? तो जवाब दे रहा है, मुलाकात कर रहा है, हिकमत अमली की अर्ज कर रहा हूं। حکمت عملی کے ساتھ بس نکالنے ہیں پیسے، یہ یاد رکھیے گا، تو یوں کر کے پیسے نکلوانے. لیکن یہ کہ جو ایسا کر رہے ہوتے ہیں، جو بےچارے ستا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، پیسے نہیں دے رہے ہوتے، حالانکہ ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں دینے کے لیے، لیکن یہ دبا رہے ہوتے ہیں. ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈریں، ایسا نہ ہو کہ یہ بےچارہ مظلوم بن جائے اور آپ کو بد دعا دے دے اور جو آپ کا بچہ کچھ ہے وہ بھی چلا جائے.
اللہ
مظلوم کی بد دعا سے ہمیشہ ڈریں،
ڈرنا چاہیے. درست فرمایا جی.
ماشاء اللہ سے حاجی صاحب اچھا پروگرام کر رہے ہیں اور بہت ہی پیارا ٹاپک آج برداشت کا ٹاپک لیا ہے. مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ ڈیوٹی کے دوران آپ کہیں ڈیوٹی کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، کوئی آپ کو غلط کرتا ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو معاف کرنا یا اس کی بات کو برداشت کرنا، تو کوئی ایسا طریقہ کار یا کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس سے برداشت کیا جا سکے یا برداشت کی تو قوت جو ہے بڑھائی جا سکے، کیونکہ آج کے دور میں برداشت کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے کسی کی بات کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ برداشت کرنے کا ثواب یا برداشت کرنے کی حدیث کی روشنی میں کوئی پوجت کا جو ہے بتایا جائے. بہت شکریہ.
صبر کرنے کے فضائل پڑے، ابھی مجھے میرے سامنے وہ بھی وہ روایتیں نہیں ہیں، ورنہ صبر کرنے کے میں آپ کو فضائل سنا دیتا. عظیم تو فضیلت ایک یہ بھی ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو صبر کے اپنے فوائد ہیں، اس کے فضائل یقیناً حدیثوں میں موجود ہیں. اور جب برداشت کریں گے تو اس کے پیچھے بھی ظاہر ہے آپ کے اندر ایک بردباری کا حلم پیدا ہوگا. معافی کے فضائل ہیں، درگزر کے فضائل ہیں، یہ سارے فضائل پڑھنے سے برداشت پیدا ہوگا. ان کے ان تمام کے پیچھے درگزر، بردباری، حیل، صبر، یہ ساری چیزیں جو آپ کے اندر برداشت پیدا کرتی ہیں اور آپ رک جاتے ہیں اور صبر کر جاتے ہیں، سیدھی سی بات ہے. تو یہ چار پانچ چیزیں اس کے پیچھے ہیں، پھر جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہتے ہیں یہ برداشت والا آدمی ہے، یہ برداشت کر لیتا ہے. تو ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ مشکل ہے، مشکل تو ہوگا نا بھائی، برداشت کرنا آسان نہیں ہے. مطلب صبر کا ثواب، درگزر کا ثواب، معاف کرنے کا ثواب، پھر مطلب کہ یہ سارے ثواب لینے ہیں تو اس میں دقت و مشکلات تو برداشت کرنی پڑتی ہے نا. تو آفیسز کے اندر بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسا رویہ آدمی اختیار کر لیتا ہے. میں نے کہا نا اگر آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں گے نا، ادفع باللتی ہی احسن والے پر عمل کر رہے ہیں، سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال، انشاءاللہ اس کا یہ نیگیٹو ایٹیٹیوڈ پوزیٹیو میں بدل جائے گا.
ماشاءاللہ صحیح.
ہم یہ یاد رکھیں
جی،
اس کی کوئی ٹائم فریم نہیں ہے، مدت نہیں، یار اتنے عرصے سے کر رہے ہیں اب تو واہ نہیں ہے، نہیں ہو جائے گا انشاءاللہ.
واہ واہ سبحان اللہ. مرحبا، مدنی پھول بھی جا رہی ہیں. یہاں ہم آپ کو ایک عید کے پہلے دن رات 9:30 ہونے والے پروگرام کا ایک پرومو دکھا رہے ہیں.
پھر بہار عید ہے، اللہ کا احسان ہے.
تو سب یہ بتائیں، پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کیا کھلائیں گے؟ آپ پوچھ سکتے ہیں،
مجھے دیکھ کر کے شرم آ رہا ہے.
کیا کھلائیں گے؟ آپ پوچھتے ہیں.
عید کو انجوائے کریں، مجھے بھی تھوڑی دیر میں اچھا سا کھانا ملے گا.
آپ کو خیالی پلاؤ بڑا مسالے والا نہیں ہوگا؟
زبردست.
ایسے کام کرنے چاہیے جس سے ہم بہت سارے لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کر سکتے ہیں.
غریبوں کا خیال تو ہر صورت رکھنا ہوتا ہے، مریضوں کا بھی خیال رکھا جائے، کو تحائف پیش کی جائے، پھل پھولیاں بھی، وہ رقم
قبر میں سے بچوں کو جب عیدی وغیرہ ملتی ہے کس قسم کا کھلونا بچوں کو دلانا چاہیے؟
میوزک تو نہ ہو، آج کل کھلونا میں میوزک بہت ہے.
آپ تو جب دیکھیں عیدی سارا سال بانٹتے ہیں، عید کے علاوہ عیدی کون سے ہو گئی؟
میں دیتا ہوں عیدی بولتا ہوں.
ایک صاحب تو ملے، وہ کہتے ہیں مجھے ایک روپیہ دیا تھا امیر علیہ سنت نے، وہ آج 1 کروڑ روپیہ بن گیا ہے.
ٹھیک ہے، تو رب جانتا ہے، دینے والا تو رب ہے.
وہ خاص روپیہ دیا تھا آپ نے تو پھر وہ ہمیں بھی دے دیں گے.
اللہ کریم،
اللہ کریم، اللہ کریم،
جو چاہتا ہے وہ
چاہتا ہے.
سب کو ہماری طرف سے ہو بہت مبارک.
کھانے میں سبزی کا جو استعمال ہے اس کے کچھ فوائد ہیں.
جس دسترخوان میں سبزی ہوتی ہے اس پر رحمت اترتی ہے.
روایت بھی، جھوٹ اور بھوک جمع نہ کرو.
کسی نے کہا کھا لو، نہیں میں پھولو، کھانا تو کھا لے ورنہ بتا دے گا مجھے نہیں کھانا.
تو کھانے کے دوران مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں،
ثواب کمانے کا موقع دے رہے ہیں نا.
جب سوال ہو رہا تھا میں نے کہا تھا جواب یہ آنا ہے.
دیکھیے پروگرام دعوت ہے کچھ خاص، پہلی عید رات 9:30 مدنی چینل پر.
واہ جی واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. نگران شورا کے ماشاء اللہ مکان علی شان پر یہ ہوا ہے سلسلہ، اور یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا پہلی عید انشاءاللہ، عید کی پہلی رات 9:30. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔